उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि अय्यूब जो परमेश्वर का एक दास है, जो धर्मी और खरा व्यक्ति है, उसके सब कुछ नाश हो चुके हैं। उसके बच्चे, उसके घर, नौकर चाकर सब कुछ लूट गया है और इतना ही नहीं, वह एक बहुत बड़ी परीक्षा में है। शैतान परमेश्वर से अनुमति लेकर के उसके सब चीजों को नाश कर चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसके शरीर को भी छुआ है और इस समय वह शरीर में फोड़े लेकर के बैठा हुआ है और उसके तीन मित्र उसे सांत्वना देने के लिए आते हैं परंतु उसे सांत्वना नहीं दे पाते हैं। तो आगे क्या होता है उसको आज हम देखेंगे कि उसके मित्र किस रीति से उसे जवाब दे रहे हैं और अय्यूब उन्हें क्या कहता है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे सामर्थी और जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर दराज में भी बैठकर आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। इस समय हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन रेडियो के समीप बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए और इस समय जब हम आपके वचन में से अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों को आप अपने अनुग्रह प्रदान करें, ताकि एक एक जन जब आपके वचन को सुने तो समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित और परेशान हैं, किसी प्रकार के दबाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए, ताकि हर एक जीवन आज के अध्ययन के द्वारा आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके। आप मेरे साथ भी हो, हम सब की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अय्यूब के पुस्तक 32 अध्याय उसके 9 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करें। आप निकाल लीजिए बाइबल में से अय्यूब के पुस्तक 32 अध्याय उसका 9 पद। लिखा हुआ है, जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। जी हाँ, सर्वशक्तिमान की ही दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। वह समझता है कि केवल परमेश्वर ही अय्यूब की समस्या का समाधान सुझा सकता है। एलीहू परमेश्वर के उत्तर के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। यदि उसके पास समस्या का समाधान नहीं है, वह यह भी जानता है कि अय्यूब के अनुभवी मित्रों के पास भी समाधान नहीं था। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 32 अध्याय उसके 10 से 12 पद में। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित लगाकर तुम्हारे सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। जी हाँ, यह सर्वथा सत्य है। आगे लिखा है अय्यूब 32 के 13 पद में, तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। मेरे प्रियो, एलीहू व्याकुल था क्योंकि उसके विचार में अय्यूब के मित्रों को समाधान खोजने में सक्षम होना था। दूसरी ओर वह अय्यूब के आत्मविश्वास, अहंकार और धार्मिकता के प्रदर्शन के कारण भी क्रोधित था। आगे हम देखते हैं कि पश्चतापी का मूल अर्थ है घायल। यह सच है कि अय्यूब मार खाकर घायल हो गया था। वह शैतान के साथ अखाड़े में था और अपने मित्रों के साथ भी उसने 3 बौद्धिक युद्ध किया था। इसमें 2 राय नहीं है कि अय्यूब घायल हो गया था, परंतु पश्चाताप का अर्थ है मनुष्य के मन में पाप का दुख और विषाद। दाऊद इस बात को समझाता था, इसी कारण उसने भजन संहिता 51 के 17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अय्यूब घायल तो था, परंतु उसका मन अभी भी टूटा नहीं था, अतः परमेश्वर का व्यवहार उसके साथ अभी पूरा नहीं हुआ था। दंभ, घमंड और हट का उत्तर केवल परमेश्वर के पास है। मेरे पास आकर लोग कहते हैं, मेरा पुत्र अब कॉलेज जाने लगा है और वह सब कुछ समझता है, मैं ऐसे पुत्र को क्या उत्तर दूं? इसका उत्तर है कि केवल परमेश्वर ही ऐसे मनुष्य के साथ व्यवहार कर सकता है जो अपनी समझ में ज्ञानवान है। मेरे मित्रों, जिस समय आप या मैं स्वयं को सही ठहराने को लग जाएं, तो निश्चय जानिए कि हमें परमेश्वर अखाड़े में ले आएगा और हम घायल हो जाएंगे। यह आवश्यक है कि वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, क्योंकि हमें पाप के बोध और दीनता के लिए घायल होने की आवश्यकता है। जॉन वेस्ली के जीवन में नम्रता की आत्मा दिखाई देती थी। उसकी नम्रता की एक व्यंग्यात्मक घटना है। एक दिन एक छोटी पुलिया पार करते समय उसका सामना उसके एक बैरी से हुआ। उससे बचना कठिन था। उसके बैरी ने सीधे खड़े होकर कहा, मैं गधे को रास्ता नहीं देता हूं। वेस्ली ने उसे देखा और कहा, मैं तो हमेशा उसे रास्ता दे देता हूं, और वह पीछे हट गया कि उसका वैरी चला जाए। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में यह एक अति उत्तम उत्तर था। मनुष्य प्रायः पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, परंतु वेस्ली तैयार था। मेरे मित्रों, टूटे मन का उदाहरण होरेसियस बोनर के अंगीकार में पाया जाता है, मैं परमेश्वर के पास गया कि अपनी उदासीनता, उपेक्षा और घमंड का अंगीकार करूं। अंगीकार करने के बाद मैं फिर परमेश्वर के पास गया और अपने पाप का पश्चाताप किया। मेरे मित्रों, यह सच्चा मन का टूटना है कि आप अपने पश्चाताप का भी पश्चाताप करें, क्योंकि हमें अपने पश्चाताप पर घमंड हो जाता है। एलीहू चाहता था कि अय्यूब के मित्र वाद विवाद आरंभ रखें। अय्यूब 32 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। इस पद से हमें यह संकेत मिलता है कि एलीहू इस पुस्तक का लेखक है। देखिए, वह मैं का प्रयोग करता है और पढ़ने से प्रतीत होता है कि वह पुस्तक लिख रहा है। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। वह कहता है कि वह कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर रोका गया है, परमेश्वर का आत्मा उसे रोक रहा था। मेरे प्रियो, दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश जन अहंकारी, चिड़चिड़े और हठी हैं। हम आसानी से भड़क उठते हैं। हम अपने आप को उचित ठहराने के प्रयास में लगे हुए रहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें झिड़के। हमें कोमलता और मृदुता नहीं है। हम दुखों पर मरहम लगाना नहीं जानते हैं। हमें टूटा मन और आंखों में आंसू नहीं है। जी हाँ, हम एलीपज की नाय अपने अनुभव सुनाते हैं। हम सोपर की नाय विधि विधान की आत्मा प्रकट करते हैं। हम विलदात की नाय मानव अधिकार को दिखाते हैं, परंतु हम मसीह का मन प्रकट नहीं करते। स्मरण रखें कि नीति वचन 15 अध्याय उसके 1 पद में हमें सिखाया गया है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हम इस सत्य को प्रायः भूल जाते हैं, या मैं अपनी बात कह रहा हूं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सृजनहार ताड़ना करके समझाता है। एलीहू के पास भी कहने को कुछ है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 1 और 2 पद में देखें, तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह से चुलबुला रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कुछ अनुपम तथ्यों पर बल देगा। अय्यूब 33 अध्याय उसके 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी, जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मेरे मित्रों, यह एक महान सत्य है, परमेश्वर मेरा सृजनहार है। एलीहू परमेश्वर के आत्मा में होकर कहता है। वह कहता है कि अन्य जन तो अय्यूब की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, परंतु वह प्रयास करेगा। पत्रस ने अपने पहले पत्र में अध्याय 4 उसके 11 पद में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, मैं अपने देश की प्रत्येक बाइबल अध्ययन कॉलेज के आराधनालय के द्वार पर यह पद लिखना चाहता हूँ, यदि प्रचारक परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता है तो वह चुप रहे। मैं एक बार कहीं पर प्रवचन दे रहा था। अंत में एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बाइबल के सिद्धांतवादी हैं। मैंने कहा, जी हाँ मैं हूँ, और मैं प्रसन्न हूँ कि आप इस तथ्य को समझ गए। उसने कहा, बाइबल को समझने के अन्य मार्ग भी हैं। मुझे बाद में पता चला कि वह रूढ़िवादी था। उसने मुझसे यह भी कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी व्याख्याएं और भी हो सकती हैं? मैंने कहा, जी हाँ। एक समय था जब मैं यह सोचता था कि मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, परंतु वर्षों मनन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि परमेश्वर केवल अनुग्रह से उद्धार करता है, और इस विषय में मैं कट्टर हूं। मैं परमेश्वर के वचन में अनेक बातों में कट्टर हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कट्टर है। जी हाँ, मैं प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के बारे में भी कट्टर विश्वासी हूं कि वह परमेश्वर का पुत्र है। मैं कट्टरता से विश्वास करता हूं कि वह कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ था। उसने आश्चर्य कर्म किए, वह हमारे लिए मरा, वह सहदेह फिर से जी उठा और वह स्वर्ग में चला गया। वह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। वह आज भी जीवित मसीह है। वह एक बार फिर से आएगा। मेरे भाई, मैं कट्टर विश्वासी हूँ। वह मुझे देखता रहा और बोला, तब तो मेरा आपसे बात करना व्यर्थ है। मैंने उससे कहा, यदि आपके विचार मुझसे मेल नहीं खाते तो आप अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे प्रियो, मुझे पत्रस की नाई कहने दें, यदि कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। निसंदेह कट्टरवादिता में अज्ञान भी है, परंतु मैं जो बात समझाना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप बाइबल का प्रचार कर रहे हैं और आपको विश्वास नहीं कि वह परमेश्वर का वचन है तो आप चुपचाप रहें। अविश्वास मुख होता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि अविश्वास बातें नहीं करता, वह बहुत बोलता है, परंतु जब तक मनुष्य परमेश्वर का वचन न बोले तो प्रचार सामर्थ्यहीन, व्यर्थ और निष्फल रहेगा। मेरे प्रियो, हम एलिहू की बातें सुन रहे थे जो वह अय्यूब से कर रहा था। उसने कहा कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। अब देखें कि वह आगे क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें कर्म से रच कर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। ध्यान दीजिए, अय्यूब की मनोकामना थी कि कोई परमेश्वर के पास उसकी दुर्दशा का वर्णन करे। अब युवा एलिहू इस काम के लिए तैयार है। वह कहता है, मैं भी उसी मिट्टी का बना हूँ जिसका तू बना है। वह अय्यूब और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ का काम बनना चाहता है। यह तो स्पष्ट है कि वह मध्यस्थ नहीं है, परंतु इससे हमारे प्रभु के देह धारण की घोर आवश्यकता प्रकट होती है। उसे मध्यस्थ होने के लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर हो, परंतु साथ ही उसे उसी मिट्टी का बना होना चाहिए जिस मिट्टी के हम सब बने हैं। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। एलिहो ने उनका वाद विवाद सुना था और अय्यूब को यह कहते हुए भी सुना था कि वह निर्दोष है। उसने अय्यूब को परमेश्वर को दोष देते हुए भी सुना था। एलिहू अय्यूब से कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से अति महान है और वह मनुष्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अय्यूब 33 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा हुआ है, देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांव को काठ में ठोंक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। जी हाँ, वह एक महान बात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से अति महान है, अर्थात बड़ा है। यह एक साधारण सी बात है, परंतु महान इसलिए है कि बहुत लोग परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। अनेक विश्वासी हैं जो आपको बताते हैं कि किसी दुर्घटना का कारण क्या है। कुछ विश्वासी तो ऐसे भी बात करते हैं जैसे उनके पास स्वर्ग का फोन नंबर है, उन्हें नया नया समाचार स्वर्ग से मिलता रहता है। मुझे तो इस बात पर संदेह होता है, परंतु अधिक बातें हैं जो हम में से कोई नहीं जानता। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। मेरे प्रियो, अय्यूब को यह समझना है कि परमेश्वर किसी को लेखा देने के लिए बाध्य नहीं है, वह किसी के अधीन भी नहीं है, चाहे कोई समूह हो या जनता हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके या मेरे अधीन उत्तरदायी नहीं है, वह हमें लेखा नहीं देगा। कुछ लोगों का कहना है, ओह, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैं नहीं जानता क्यों। परंतु मेरे मित्रों, वह बाध्य नहीं है मुझे लेखा दे। आवश्यक नहीं कि वह आपको कारण बताए। उसने मुझसे केवल विश्वास करने के लिए कहा है। उसने मुझे अंधकार से निकालने की प्रतिज्ञा नहीं की है, परंतु उसने यह अवश्य कहा है, अपना हाथ मेरे हाथ में दे और मैं तुझे अंधकार में लेकर चलूंगा। उसने हमें हर एक बात समझाने की प्रतिज्ञा नहीं की है, उसने हमसे कहा है कि उस पर भरोसा रखें। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय। ध्यान दीजिए, हमारे पास बाइबल है, हमें स्वप्न पर विश्वास नहीं करना है, तथापि जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां मेरे विचार में परमेश्वर अब भी इसी विधि को काम में लेता है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। जी हाँ, अय्यूब की समस्या थी कि उसे भयानक रोग था, आत्मा का कैंसर, जो घमंड है। ओह, मनुष्य का घमंडी मन। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में भी यही देखता हूँ, क्या आप अपने जीवन में इसे देखते हैं? हमें राख डालकर टाट ओढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मनुष्य हैं। एलिहू कहता है कि परमेश्वर ताड़ना करके मनुष्य को समझाता है। अय्यूब का झूठा तर्क समझना आसान था, वह परमेश्वर के गुण को नहीं जानता था, इसी कारण वह अपने साथ परमेश्वर के व्यवहार को नहीं समझ पा रहा था। मेरे मित्रों, परमेश्वर अय्यूब के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा था कि वह उसके घमंड का निवारण करना चाहता था। अय्यूब एक अच्छा मनुष्य था, वह महापुरुष था, परंतु वह आपके और मेरे समान पतित और गिरा हुआ पापी था। पाप के कारण हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। उदाहरण स्वरूप, हम अपने आलोचकों से कुपित और क्रोधित हो जाते हैं। अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय उसके 7 पद में कहता है, वह धर्मियों से अपनी आंख नहीं फेरता। जी हाँ, हम उसके हाथ में और उसकी दृष्टि में सदा उपस्थित रहते हैं, हम उसके अगाध कोमल प्रेम के पात्र हैं, ऐसा प्रेम बदलता नहीं। दूसरी ओर, हम उसके नैतिक एवं बुद्धिमान प्रबंधन के भी अधीन हैं। वह अपनी संतान को बिगड़ी संतान नहीं देख सकता है। जिस प्रकार हम मनुष्य अपने बच्चों की चिंता करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी प्रकार की बुरी संगति में या गलत काम में पड़ें या जाएं। हम उसे सुधारने के लिए, उसे उस चीजों से बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें डांटते और फटकारते हैं, कभी कभी हम उन्हें ताड़ना भी देते हैं, ताकि हमारे बच्चे उन मार्गों पर न पड़ें। जी हाँ, परमेश्वर भी कई बार मुझे और आपको हमारे हर एक कमजोरियों से बाहर निकालने के लिए किसी प्रकार की ताड़ना को प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे नफरत करते हैं। वे मुझे और आपको बनाना चाहते हैं, मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, ताकि हम और अधिक उससे प्रेम कर सके। आज भी मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी कुछ गलत काम करने पर मुर्गा बनाकर बैठा देते थे और कई घंटों तक उसी स्थिति में रहना पड़ता था। परंतु आज जब मैं उस बात को स्मरण करता हूँ तो अपने पिताजी को मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि यदि आज उसने मुझे उस प्रकार की सजा न दी होती तो शायद आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में न बांटता होता, मैं किसी और स्थान पर होता। उसने मुझसे प्रेम किया, न कि मुझे ताड़ना दिया। जी हाँ, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर को इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब अपने घमंड में बहुत ऊपर चढ़ गया है और परमेश्वर उसके जीवन में इस बात को बताना चाहते हैं। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उससे कहें, प्रभु, मेरे जीवन के हर एक त्रुटियों से आप मुझे छुटकारा दीजिए। और आप निश्चय जाने कि जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं, कमजोरियों को उसके सामने मान लेते हैं, तो वह आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में अय्यूब की पुस्तक में से सीखा है और आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही इसे अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले। सुनहरा इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैं